25 जून दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। तुर्की के चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगान की जीत, विपक्षी नेता ने हार स्वीकार की।
तुर्की तरजीहने PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır.
महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के आरोपों का किया खंडन, राजनीतिक हलकों में इसकी व्यापक आलोचना।
ज्यादा हमारा यही मानना है कि महबूबा मुफ्ती का आज का परेशान होना, आज का पेशेमान होना तो कोई माने रखता है तो उसे कश्मीर को कोई फायदा पहुंचने वाला है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान के मुख्य प्रतिद्वंदी मुहर्रम इंचे ने अपनी हार स्वीकार करते हुए चेतावनी दी है कि तुर्की एक व्यक्ति के शासन के खतरनाक दौर की ओर बढ़ रहा है। धर्मनिरपेक्ष रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार इंचे ने एर्दोगान से सभी तुर्कों का नेतृत्व करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थी। 50% से अधिक मतों के साथ जीत दर्ज करने वाले एर्दोगान को अब नई शक्तियां मिल जाएंगी। बीते साल जनमत संग्रह में पारित हुई नई व्यवस्था के तहत अब तुर्की में प्रधानमंत्री का पद नहीं होगा। सरकार के मंत्रियों को भी एर्दोगान ही नियुक्त करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एर्दोगान की जीत उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ को दिखाती है। ईरान और फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी नतीजों का स्वागत किया है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी एर्दोगान को मुबारकबाद भेजी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के एक दल ने कहा है कि तुर्की के चुनावों में राष्ट्रपति एर्दोगान और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय मीडिया से अनुचित लाभ मिला है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनाव में मुकाबला बराबरी का नहीं था। पर्यवेक्षकों ने यह भी कहा कि तुर्की के मतदाताओं के पास चुनाव करने की पूरी आज़ादी थी। इटली के धुर दक्षिणपंथी नेता और गृहमंत्री मैथियो साल्विनी ने लीबियाई सरकार से वार्ता के बाद कहा है कि प्रवासियों के आवेदनों के लिए केंद्र लीबिया के दक्षिण में खुलने चाहिए। लीबिया के उप प्रधानमंत्री अहमद मतीक के साथ साझा प्रेस वार्ता में साल्विनी ने कहा कि ऐसे केंद्र खुलने के बाद लीबिया प्रवासियों का रास्ता नहीं बनेगा। वहीं मतीक ने कहा है कि उन्होंने लीबिया में प्रवासी कैंप बनाने से खुला इनकार किया है। प्रेस वार्ता में साल्विनी ने कहा, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश इटली में हॉटस्पॉट बनाने के प्रस्ताव दे रहे हैं। ये हमारे लिए समस्या होगी और लीबिया के लिए भी, क्योंकि इससे प्रवासियों के आने की रफ्तार को अवरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हमने अन्य यूरोपीय देशों के साथ लीबिया की दक्षिणी सीमा के पास प्रवासी केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे लीबिया भी इटली की तरह प्रवासियों का अड्डा नहीं बनेगा। ये थे इटली के गृहमंत्री मैथियो साल्विनी के शब्द। ईरान की राजधानी तेहरान के मुख्य इलाके में प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों पर दंगारोधी पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। ज्यादातर प्रदर्शनकारी तेहरान के मुख्य बाजार के व्यापारी हैं, जो बढ़ती कीमतों और तेहरान की मुद्रा में गिरावट से परेशान हैं। ये साल 2012 के बाद से ईरान में हो रहे सबसे बड़े प्रदर्शन हैं। 2012 के प्रदर्शनों के बाद ईरान में सरकार बदल गई थी और ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता भी कर लिया था। उत्तरी थाईलैंड में गोताखोरों का एक दल शनिवार से गायब एक फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ियों और उनके कोच को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन स्थल पर आई किशोरों की ये टीम अचानक आई बाढ़ के बाद संकरी सुरंगों में फंस गई थी। मलेशिया की एक मस्जिद में कम कपड़े पहने दो महिला पर्यटकों का वीडियो वायरल होने के बाद पर्यटकों के मस्जिद में आने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारी वीडियो में दिख रही महिलाओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा किनाबालू शहर में स्थित यह मस्जिद अपने नीले और सुनहरे गुंबद के लिए खास पहचान रखती है। मस्जिद के प्रमुख का कहना है कि महिलाओं का व्यवहार अस्वीकार्य है और ये अस्थायी प्रतिबंध इस्लाम की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तुर्की में हुए चुनाव में राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दवान को सबसे अधिक वोट हासिल हुए हैं और उनकी पार्टी एके सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। इसका मतलब ये हुआ कि एर्दवान एक बार फिर से राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। उनकी इस पारी में एर्दवान में को ढेर सारे नए अधिकार हासिल होंगे, जिसमें अहम पदों पर लोगों की नियुक्ति शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति का इस तरह केंद्रीकरण तुर्की के लिए अच्छा नहीं है और उनके निरंकुश तानाशाह बनने का खतरा हर वक्त मुल्क पर लहराता रहेगा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा विवरण सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
तुर्की में चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मुल्क में हुए मतदान में राष्ट्रपति रिचेप तैयब एर्दवान को सबसे अधिक 53% वोट हासिल हुए हैं। उनके सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी मुहारेम इंजा को 31% वोट मिले। इसके साथ ही रिचेप तैयब एर्दवान अगले 5 सालों के लिए राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। हालांकि एर्दवान को इस चुनाव में बेहतर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर मूलभूत ढांचे में निवेश कराने को लेकर समर्थन हासिल था, लेकिन फिर भी ये मुकाबला उनके लिए आसान न रहा। 64 साल के एर्दवान पर विरोधियों को दबाने और कम से कम 1,60,000 लोगों को जेल में डालने का आरोप है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मुहारिम इंजा ने हालांकि चुनाव में हार मान ली है, लेकिन भविष्य में एक तानाशाह शासन के खतरे से लोगों को आगाह किया है। उन्होंने एर्दवान से कहा कि ज़रूरत है कि वो तुर्की के सभी लोगों के नेता बनकर उभरें। उनका कहना था कि ये चुनाव साफ सुथरा नहीं था। हम लोग एक ऐसे चुनाव में शामिल हुए हैं जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे भविष्य को बड़े रूप में प्रभावित करेगी। घोषणा से लेकर नतीजे आने तक ये चुनाव किसी भी रूप में साफ सुथरा नहीं रहा। तुर्की के चुनाव में दूसरे स्थान पर आए मुहारिम इंजा के शब्द। इस चुनाव में 4 और उम्मीदवार भी शामिल थे, लेकिन उन सभी को 10% से भी कम मत हासिल हुए। एर्दवान ने राजधानी अंकारा में मौजूद पार्टी मुख्यालय से चुनाव जीतने के बाद दिए भाषण में कहा कि ये जीत तुर्की के सभी 8,10,00,000 शहरियों की है। राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपने कार्यक्रमों को जल्द से जल्द लागू करेंगे। तुर्की ने फैसला किया है कि वो सभी आतंकवादी संगठनों, जिसमें पीके और फेटा भी शामिल है, के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। साथ ही इन नतीजों से ये साफ हो गया है कि हम सीरिया को मुक्त कराने का काम जारी रखेंगे ताकि हमारे यहाँ आए मेहमान वापस अपने घरों को लौट सकें। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दवान के शब्द। हालांकि राष्ट्रपति के तौर पर ये एर्दवान की दूसरी पारी है, लेकिन इसमें उन्हें कई नए अधिकार हासिल होंगे, जिसकी हामी पिछले साल हुए जनमत संग्रह में 51% नागरिकों ने दे दी थी। नए शक्तियों में अहम अधिकारियों, मंत्रियों और उपराष्ट्रपति चुनने का उन्हें अधिकार होगा। वो मुल्क की न्याय व्यवस्था में भी दखल दे सकेंगे, साथ ही साथ उन्हें देश में आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार होगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे बहुत सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी और तुर्की की व्यवस्था उस तरह की नहीं है जैसी फ्रांस या अमेरिका में है, जहां बहुत सारे अधिकार होने के बावजूद राष्ट्रपति पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। 2014 में राष्ट्रपति बनने से पहले एर्दवान 11 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नए संविधान के भीतर वो 2023 के बाद भी एक बार और चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं।
तुर्की में राष्ट्रपति तैयब एर्दवान की जीत। और अब भारत से कुछ विषय। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में पीडीपी पर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों का पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जवाब तो दिया है, लेकिन कश्मीर के राजनीतिक दल और विश्लेषक महबूबा और अमित शाह के बयानों के अलग अलग माने तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आरोपों के बाद पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इतवार को एक के बाद एक ट्वीट कर भाजपा के आरोपों का जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पीडीपी पर लद्दाख और जम्मू के साथ जिस भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता तो बीते 3 वर्षों में भाजपा के किसी केंद्र या राज्य मंत्री ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? महबूबा ने अपने एक और ट्वीट में कहा है कि आर्टिकल 370 की बरकरारी, पाकिस्तान और हुर्रियत के साथ बातचीत एजेंडा पहला इसका हिस्सा था। उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाना, पत्थरबाजों के खिलाफ मामले वापस लेना और एक तरफा सीज फायर जैसे फैसले लेना, जमीनी सत्ता पर हालात को सामान्य बनाना एक अहम ज़रूरत थी और इन सब बातों को अमलाने के लिए बीजेपी का भी समर्थन हासिल रहा। एक और ट्वीट में महबूबा ने कहा है कि हमने कभी भी एजेंडा बैलेंस से बाहर कोई काम करना नहीं चाहा, जिसको अब बीजेपी सॉफ्ट अप्रोच का नाम दे रही है। हालांकि कश्मीर के कई राजनीतिक दल महबूबा मुफ्ती के दिए गए जवाबों से सहमत नहीं हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और विधायक इंजीनियर रशीद,
खरीदार नहीं, जो स्पेस उन्हें बीजेपी और संघ परिवार को देनी थी, जो नुकसान उन्हें कश्मीरियों को करना था वो उन्होंने कर दिया। कल तक वो इक्तदार की लालच में अंधी हो चुकी थी, बहरी हो चुकी थी, गूंगी हो चुकी थी। लिहाजा हमारा यही मानना है कि महबूबा मुफ्ती का आज का परेशान होना, आज का बेशमान होना ना कोई माने रखता है ना उसे कश्मीरियों को कोई फायदा पहुंचने वाला है।
वहीं CPIM के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कहते हैं कि दोनों जमातें राजनीतिक फायदा लेने की दौड़ में हैं।
ये एक मेरे ख्याल में डिवीजन ऑफ लेबर है। अमित शाह साहब खुद कहें और फिर महबूबा जी जवाब दें। सांझा मोर्चा है वो जम्मू के बारे में, जम्मू के कान सुबंसी के बारे में सोचें और उसके रद्द अमल में महबूबा जी अपने आप को कश्मीर के गमखार के तौर पर पेश कर लें।
विश्लेषक कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के इस तरह के बयानात इस बात की तैयारी है कि आने वाले दिनों में PDP अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए एक कैंपेन को लॉन्च कर सकती है। विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ताहिर मुहिदीन,
काफी खसारा हुआ है उनका पॉलिटिकली, खासकर साउथ में जो उनका स्ट्रांग होल्ड बैस्टियन था, वहाँ उनके खिलाफ काफी मतलब रिजेंटमेंट है। तो महबूबा उनको फैसला करना ही होगा PDP को कि आइंदा चलने के लिए उन्हें क्या करना है। मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद ये हो सकता है कि वो कोई कंपेन शुरू कर दें, अपनी सफाई देने की या लोगों के पास जाने की, उनको बता दें कि गलतियों पर अफसोस जाहिर करने की या लोगों को फिर जो अपनी साख है उसको बहाल करने के लिए उनको, मुझे लगता है नॉर्मली कॉमन सेंस यही है कि उनको करना पड़ेगा।
वर्ष 2014 में PDP और BJP ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाई थी। दोनों ही जमातों ने सरकार को चलाने के लिए एजेंडा ऑफ अलायंस नाम का खाका तैयार किया था और इस बात पर दोनों जमातों ने सहमति जताई थी कि एजेंडा ऑफ अलायंस के दायरों के अंदर रहकर सरकार चलाई जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने सरकार गिरने के तुरंत बाद प्रेस सम्मेलन में बताया था कि BJP के समर्थन वापस लेने से उन्हें किसी तरह की हैरानगी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि PDP का सारा खेमा सरकार गिरने के बाद अभी तक सदमे में है। अब देखने वाली और दिलचस्प बात यह होगी कि सरकार चली जाने के बाद अब PDP जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
2019 में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बिहार में सत्तारूढ़ BJP GDU गठबंधन की लड़ाई अब पूरी तरह से सतह पर आ गई है। अभी तक गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली JDU ने BJP नेताओं को उनके बयानों के लिए भी आड़े हाथों लिया है। JDU ने साथ ही इशारों में BJP को चेतावनी भी दे डाली है कि 2014 और 2019 के माहौल में काफी फर्क है। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
अगले लोकसभा चुनाव में सीटों के दावों पर बिहार में सत्तारूढ़ NDA में बयानों का दौर जारी है। इन बयानों ने तब जोर पकड़ा था जब इस महीने की शुरुआत में JDU की ओर से कहा गया कि बिहार में NDA का चेहरा नीतीश कुमार होंगे और गठबंधन में JDU ही बड़ी पार्टी रहेगी। बयानों का दौर हर बीतते दिन के साथ तीखा होता जा रहा है। कभी सीटों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं तो कभी इस पर कि नीतीश कुमार बिहार में NDA का चेहरा होंगे या नहीं। इस बीच JDU के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह का आज यह बयान आया कि भाजपा को सहयोगियों की जरूरत नहीं है तो वह बिहार में सभी 40 सीटों पर लड़ने के लिए स्वतंत्र है। मैंने उनसे पूछा कि उनको ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी।
पूर्व में जो बयान आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उस बयान को आप बारीकी से देखेंगे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 40 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर आपको सहयोगियों की नहीं जरूरत है तो 40 सीट पर लड़ सकते हैं।
जब से बिहार NDA के घटक दलों के बीच बयानबाजी शुरू हुई है तब से भाजपा इन बयानों को अनदेखा करने, इसे बेमतलब बताने की रणनीति पर चलती नजर आ रही है। बीबीसी से बातचीत में बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अभी बिहार सरकार में मंत्री नंद किशोर यादव ने आज भी फिर ऐसी ही प्रतिक्रिया दी।
ऐसे बयानों का चुनाव के एक साल पहले कोई औचित्य नहीं होता। जब बड़े लोग आपस में बैठेंगे तो निर्णय कर लेंगे। कभी कठिनाई नहीं हुई, हम एक दो चुनाव थोड़ी लड़े, दसों चुनाव हम साथ मिलकर लड़े हैं और हर चुनाव के पहले इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं तो हम हर चुनाव में समाधान भी निकालते हैं, फिर इस बार समाधान निकालेंगे। कोई कठिनाई नहीं है, इन बयानों के ऊपर मत जाइए।
जानकारों का मानना है कि एनडीए में शामिल दल लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं भाजपा के सामने सीट बंटवारे की चुनौती इस कारण बढ़ गई है क्योंकि उसके 2000 के चुनाव के सभी सहयोगी भी साथ हैं और इस बीच बीते साल जदयू जैसी बड़ी पार्टी भी वापस एनडीए में शामिल हो गई है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। पिछले हफ्ते लखनऊ में ट्विटर पर शिकायत के बाद तन्वी सेठ नाम की महिला को हाथों हाथ पासपोर्ट बनाकर देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां इस मामले में खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सोशल मीडिया में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, वहीं दूसरी ओर कथित तौर पर नियमों की अनदेखी करके पासपोर्ट उपलब्ध कराने के मामले में लखनऊ का पासपोर्ट दफ्तर भी विवादों में आ गया है। एक रिपोर्ट के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
अनस सिद्दीकी और तन्वी सेठ के पासपोर्ट मामले में अब पासपोर्ट विभाग भी बैकफुट पर आ गया है। ट्विटर पर तन्वी सेठ की शिकायत के बाद अगले ही दिन दोनों को पासपोर्ट बनाकर सौंप देने वाले लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अब किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं इस मामले में दंड स्वरूप ट्रांसफर किए गए अधिकारी विकास मिश्र के समर्थन में सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अभियान चलाया जा रहा है। खुद विकास मिश्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने वही किया जो नियमों के तहत किया जाना था।
उस कॉलम में हमने सिर्फ उनसे यही पूछा कि ये नाम है और आप हमको निकाहनामा में दिखा रही हैं कि आपका नाम शादिया अनस है, तो आप इस नाम को एक फाइल में इंडोर्स करा लीजिए, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अगर वो कंसेंट दे देती कि हाँ नाम एंडोर्स करा देती तो हम ए सेक्शन में भेज देते और ए सेक्शन सिंपली डेटा मॉडिफिकेशन वो एंट्री करा देती, वो नहीं करा रही। क्यों नहीं करा रही है?
पिछले हफ्ते तन्वी सेठ ने ट्विटर पर शिकायत की थी कि उनके मुस्लिम पति को पासपोर्ट अधिकारी ने धर्म बदलने की सलाह दी थी, अन्यथा पासपोर्ट न बन पाने की बात कही थी। लेकिन पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्र का कहना है कि तन्वी सेठ ने एक तो अपना नाम एक बार अपने निकाहनामे में बदला है और दूसरे वो लखनऊ की बजाय नोएडा में रहती हैं। तन्वी सेठ ने ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी टैग किया था और माना जा रहा है किसी वजह से आनन-फानन में तन्वी सेठ और उनके पति को पासपोर्ट बनाकर दे दिया गया, लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसा करना नियमों के विपरीत है। लखनऊ में पासपोर्ट अधिकारी रहे आर.एन. रॉय कहते हैं,
पासपोर्ट का ये सेक्शन है, नियम है कि आप परमानेंट कहीं के भी रहने वाले, अस्थायी कहीं के भी रहने वाले हैं, पासपोर्ट का ज्यूरिडिक्शन वहीं से होता है जहाँ आप वर्तमान में जो है पदस्थापित रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। केवल ये छूट छात्रों को और आर्मी डिफेंस पर्सनल के लिए है कि वो अपने अस्थायी पते से भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जो इसके सिवाय जो भी कोई जो भारतीय नागरिक है, पासपोर्ट उसको वहीं से बनेगा जहां पे वो वर्तमान में आवासित है। जो
माना जा रहा है कि शिकायतकर्ताओं के दबाव में पासपोर्ट अधिकारियों ने नियमों को भी धता बता दिया और इस मामले में जब खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर ट्रॉल होने लगी, यानी आलोचनाओं का शिकार होने लगी और खुद बीजेपी में दबी जुबान उनकी आलोचना होने लगी, तो अब इस मामले की नए सिरे से जांच की मांग उठने लगी है। लखनऊ में बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं,
जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है, इस पर पूरी एक नियमानुसार वास्तविकता में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में जो भी तथ्य हैं वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में निकल करके सामने आएंगे और देश भी जान पाए कि वास्तविक तथ्य वहाँ क्या थे और उन किन तथ्यों के आधार पर ये पूरा प्रकरण खड़ा हुआ। अगर नियमों को ताक पर रख करके किसी भी प्रकार की गलत कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पर रेक्टिफिकेशन करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी और सरकार को करना भी चाहिए।
वहीं तन्वी सेठ और अनस सिद्दीकी भी अब इस मामले में बातचीत से कतरा रहे हैं। हालांकि जिस दिन उन्हें पासपोर्ट मिला था उस दिन तक वो लोग इसी बात पर कायम थे कि उन्हें विभाग के अधिकारियों ने परेशान किया है। लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने गत 21 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों को पासपोर्ट उनके हाथ में सौंपे थे। उन्होंने दावा किया था कि पासपोर्ट सारी जाँच पड़ताल के बाद उन्हें सौंपा गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक जिस तरह की जाँच पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी होती है वो महज कुछ घंटों में पूरी नहीं हो सकती। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में 3 दोषियों पर गुजरात हाईकोर्ट की बेंच ने पीजे राजपूत, राजकुमार चौमल और उमेश भरवाद को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले 2012 के एक फैसले में 3 दोषियों को व 29 अन्य लोगों को एसआईटी की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। थोड़ी देर पहले मैंने बीबीसी गुजराती सेवा के पारस झा से इस फैसले का विवरण मांगा।
ये जो 3 लोग हैं जिनको आज गुजरात हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है, उनको ट्रायल कोर्ट ने 2012 का जो वर्डिक्ट आया था जिसमें माया कोडनानी को उन्होंने 28 साल की कैद सुनाई थी, अपने वर्डिक्ट के अंदर उन्होंने इनको निर्दोष करार दिया था। और ये जब अपील हुई तब अपील के अंदर ये जो 3 लोग हैं उनको दोषी पाया गया है और हाईकोर्ट ने इन 3 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है।
ये बताइए, ये पूरा मामला था क्या? ये
बात ये थी, हम सबको पता है कि 2002 में गुजरात में जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा में जलाई गई और उसके अंदर करीब 59 जितने कार सेवक विश्व हिंदू परिषद के जो कि अयोध्या से वापस लौट रहे थे उनको वो जल गए, और उसके बाद में जो गुजरात में दंगे फैले उसमें 28 फरवरी को अहमदाबाद का ये जो नरोडा एरिया है वहाँ पर ये दंगे हुए और उसके अंदर करीब 90 से ज़्यादा लोगों की जान गई, और उसके अंदर उस वक्त की एमएलए और मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्री महिला मंत्री थी माया कोडनानी का भी नाम आया था और उनके सामने भी केस हुआ, और ये केस 2009 से लेके 2012 तक चला जिनमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को सजा दी गई थी और उनके साथ में और जो अभियुक्त थे उनको भी दोषी पाया गया था।
क्या ये लोग जिनको सजा दी गई है आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे इसके खिलाफ?
क्योंकि पहले ट्रायल कोर्ट ने इनको निर्दोष करार दिया था और अभी हाई कोर्ट ने उनको फिर से किया गया है, तो अभी शायद वो लोग कर भी सकते हैं मगर उसके लिए हमें उनके लॉयर से बात करनी पड़ेगी।
ये थे बीबीसी गुजराती सेवा के पारस झा। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और
सुमिरन प्रीत कौर का।
आज सुमिरन प्रीत कौर मेरे साथ हैं स्टूडियो में, उनके साथ बहुत सारी चिट्ठियां हैं, ईमेल भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पोस्ट कार्ड हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं ये गुस्ताखी कर दूं, आज की चिट्ठी से मैं शुरुआत करूं।
बिल्कुल पढ़िए सर।
तो एक चिट्ठी है, हमारे पुराने श्रोता हैं परमानंद मिश्र, रामनगर चंपारण बिहार से। इन्होंने बहुत नाराज होकर चिट्ठी लिखी है, इनको एतराज़ है ईमेल से, इंटरनेट से, एसएमएस से, टेलीविज़न से और यूट्यूब जैसी चीज़ों से, इनको गंभीर एतराज़ है। लिखते हैं, बीबीसी का दिल और बीबीसी रेडियो की ध्वनि तरंगों को जितना अच्छा से रेडियो बीबीसी श्रोता समझता है उतना टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े श्रोता नहीं समझते हैं। कृपया आप चांद पर जाएं, मंगल पर जाएं, आविष्कार को अपनाएं, मगर बीबीसी हिंदी रेडियो वालों को तिरस्कृत न करें। अब बताइए सुमिरन प्रीत कौर, परमानंद मिश्र साहब का हम क्या जवाब दें? हम तो कभी अपने सपने में, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं कि बीबीसी हिंदी रेडियो सुनने वालों को हम तिरस्कार करेंगे, यानी हम अपना खुद का तिरस्कार करेंगे।
जी बिल्कुल।
तो इसलिए मिश्र जी, आप इस बात से ज़रूर नाराज़ हैं कि बीबीसी में ईमेल आते हैं और इंटरनेट के ज़रिए जाता है, एसएमएस भी आते हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा आप समझेंगे और समझते ही हैं कि ज़माना बहुत बदल चुका है। जब शुरुआत हुई थी तो रेडियो था और अब मोबाइल पे भी लोग सुनते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, फेसबुक पर भी सुनते हैं, तमाम तरीके से बीबीसी के जो कार्यक्रम हैं दुनिया भर में फैलते हैं। आप रेडियो से सुनिए, बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी को सुविधा है तो मोबाइल पर सुने, किसी और को सुविधा है तो फेसबुक पर सुने, ये आप जो भी करें लेकिन सुनना नहीं छोड़िए हमें। तो आप परमानंद जी हमें अगली चिट्ठी में लिखिएगा कि आप कैसे सुनते हैं और हमारे कार्यक्रमों के बारे में आपकी राय का हम इंतजार करेंगे
जी, और अलग अलग माध्यम के जरिए हम लोगों से जुड़ना ही चाहते हैं।
बिल्कुल चाहते। तो अब अगली चिट्ठी आप पढ़िए,
और इनकी चिट्ठी पढ़कर मैं पहचान जाती हूँ क्योंकि रंग अलग अलग तरह के हैं,
एक,
पेन
दो,
के
तीन रंगों में उन्होंने चिट्ठी, चार रंगों में चिट्ठी लिखी है।
और ये है नागेंद्र कुमार कुशवाहा की, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से।
देखिए चिट्ठी तो बहुत लंबी है लेकिन आप उसका संक्षेप में अगर पढ़ सकें तो मुझे लगता है कि बात आ जाएगी।
जी, शुरुआत करते हैं कि 15 जून 2018 की दूसरी सभा में जनाब रेहान फजल साहब का जो प्रस्तुत कार्यक्रम दिन भर में, वो उन्हें बहुत पसंद आया। कार्यक्रम सुरैया पर था और रेहान साहब के अथक प्रयास से विवेचना को जैसे पंख लग जाते हो, ऐसा कहना है इनका।
इनकी बात इस कार्यक्रम
के माध्यम से उस जमाने के मशहूर और जो बिना का गीतमाला के निर्माता जनाब अमीन सयानी से सुरैया की जो सीधी बातचीत थी वो सुनने को इन्हें मिली और यादें ताज़ा हो गई इनकी।
देखिए, आप ही की चिट्ठी के जरिए मैं दरअसल अमीन सयानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मुझे बहाना भी मिल गया, उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बीबीसी हिंदी के लिए जिस तरह से अपने खजाने से चीज़ें निकाली और जो बिना का गीतमाला और पहले से बाका गीतमाला सुनते थे वो जानते होंगे अमीन सयानी साहब को, और उन्होंने बीबीसी में बहुत खुश होकर के अपना सहयोग दिया था।
जी बिल्कुल। और अब ईमेल की बारी।
अब ईमेल की बारी जी।
बिल्कुल। और ईमेल है अमित कुमार का, जो लिखते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में घेरावल गांव का रहने वाला हूं और 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मैं
अच्छा।
मैं आपके कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनता हूं, जिससे मुझे बहुत जानकारी मिलती है। इंडिया बोल कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है।
देखिए, मुझे खुशी इस बात की है इस चिट्ठी को सुन करके, इस ईमेल को सुन करके, कि बीबीसी श्रोताओं की नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है, और जितना पुरानी पीढ़ी हम पर भरोसा करती है उतना ही नई पीढ़ी भी हम पर भरोसा करती है। हमारे कार्यक्रम सुन करके उनको कहीं कुछ फ़ायदा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, लगातार सुनते रहिए।
अगला ईमेल लिखा है अश्विनी भावे ने, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में हुए दलित समुदाय की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके सहायता हेतु किए गए उपायों का सार जो है अच्छा लगा। सर्वप्रिया सांगवान को मेरा नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रिया सांगवान। उन दोनों गांवों में गई थी, बहराइच भी और यहाँ हरियाणा में भी, और उन्होंने वहाँ से जो खबर की थी उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की, इसलिए हमें और संतुष्टि मिली है। तो मुझे लगता है अब समय थोड़ा कम है, एक आखिर में एक लाइन की एक ईमेल है। अहमदाबाद से रुचा दवे ने पूछा है, कृपया मुझे अपने विचार पोस्ट करने की विधि बताएं। तो विधि बहुत आसान है, एक तो हमें चिट्ठी लिखिए आप, दूसरा हमारा जो फेसबुक पेज है बीबीसी हिंदी का, जब हमारे कार्यक्रम लाइव होते हैं तो आप अपनी टिप्पणी उसमें लिखिए। पहले हमारे पेज को लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी हमें लिखिए और ईमेल से हमें या चिट्ठी से अपने विचार जरूर बताइएगा। और विचार हमें भेजने का पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल से लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब विश्व कप फुटबॉल, इस समय दो मुकाबले साथ साथ होते हुए मेरे सामने बैठी हैं हमारी नई साथी ज्योतिका सिंह, नज़र रखे हुए दोनों मुकाबलों पर। बताइए क्या क्या मैचेस हो रहे हैं इस समय।
जी रेहान जी, सो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए का मुकाबला चल रहा है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में, जहां इजिप्ट ने अभी एक गोल किया है। दूसरी तरफ उरुग्वे और रशिया भी आमने सामने हैं, जहाँ उरुग्वे ने अभी दो गोल कर दिए हैं।
तो उरुग्वे को जीतना चाहिए इसमें इस तरह से, तो बहुत ही रोमांचक स्थिति में। और खेल के क्या क्या खबरें हैं आपके पास।
थोड़ी देर में ग्रुप बी के मैच शुरू होंगे, जहां ईरान और पुर्तगाल आपस में भिड़ेंगे, और थोड़ी देर में उसके बाद स्पेन और मोरक्को भी आमने सामने होंगे। तो ग्रुप बी में ईरान और पुर्तगाल के बीच में जो मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, उसके बारे में कहते हैं फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया, तो उनसे हम बात करते हैं।
क्योंकि ईरान पहला मैच जीते हैं तो वो अभी तक रेस में है, और उनका पुर्तगाल के विरुद्ध बहुत ही कठिन मैच होने वाला है, क्योंकि ईरान ऐसी एक एशिया की टीम है जिसकी रक्षा पंक्ति बहुत मजबूत है। क्वालिफायर में भी उन्होंने कुछ 12 मैच में गोल नहीं खाए। गोलकीपर भी शायद बेरनियाद इस विश्व कप के अभी तक सबसे अच्छे गोलकीपर में से गिने जा सकते हैं, क्योंकि जो जाने माने हैं जैसे दाविद दिहिया या मैनुअल नॉयर, सबने गलती की, उन्होंने अभी तक गलती कोई नहीं की है।
तो नोवी कपाड़िया बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
ईरान की राजधानी तेहरान के मुख्य इलाके में प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों पर दंगारोधी पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। तुर्की में राष्ट्रपति अर्दोगान के मुख्य प्रतिद्वंदी मुहर्रम इंची ने अपनी हार स्वीकार करते हुए चेतावनी दी है कि तुर्की एक व्यक्ति के शासन के खतरनाक समय की ओर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के एक दल ने कहा है कि तुर्की के चुनावों में राष्ट्रपति अर्दोगान और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय मीडिया से अनुचित लाभ मिला है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।